अव्यवस्थितां दृष्ट्वा भारतराष्ट्रान् कपि ध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते अनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपति अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा भारतराष्ट्रान् कपि ध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते अनुरुद्यम् पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपति। कुरुक्षेत्र के मैदान का स्मरण करें जहाँ दोनों ओर कौरवों और पांडवों की सेनाएं खड़ी हुई हैं। पहले दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और उसने उनसे बोला कि देखो पांडवों की सेना को आप देखो किन किन से युद्ध करना है, और फिर ये भी कहा कि समय सेनाध्यक्ष जो है भीष्म पितामह हैं, उनकी रक्षा आप और सब लोग उनकी करें। उसके बाद भीष्म पितामह ने शंख ध्वनि कर दी और फिर पांडवों की तरफ भी सब लोगों ने अपने अपने शंख बजाए और शंखों की बजने की ध्वनि का प्रभाव भी बता दिया संजय ने कि कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, माने भयभीत हो गए। उनको वो ध्वनि बड़ी कर्कश लगी और व्यथित होने लगी। अब इसके बाद ये बताते हैं कि जब ये शंख ध्वनि हो चुकी तब अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में बात होती है। अर्जुन भगवान कृष्ण से आगे कहने जो जा रहा है वो अब कहता है। दुर्योधन शंख ध्वनि के पहले द्रोणाचार्य के पास जाता है और बोलता है, अर्जुन शंख ध्वनि के बाद भगवान कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को खड़े करने के लिए कहते हैं। दोनों का अंतर जो है ये अपने आप देखना चाहिए, अध्ययन करो इसको, देखो कि लोगों की प्रवृत्ति किस प्रकार की है, द्रोणाचार्य की प्रवृत्ति किस प्रकार की है, अर्जुन की प्रवृत्ति किस प्रकार की है, ये कैसे व्यवहार करते हैं, ये तरीका जीवन जीने का तरीका कैसे बदल जाता है। जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्तर भिन्न भिन्न होता है तो उनका बोलने का ढंग बदल जाता है, उनका व्यवहार का ढंग बदल जाता है, ये भी शास्त्र दिखाते रहते हैं बराबर। इसलिए अब जबकि देखा कि शंख ध्वनि हो गई तो अर्जुन देखा अब तो बस युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है। अथ व्यवस्थितान् तान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपि ध्वजः, इन शब्दों में भी संजय के शब्द हैं, इन शब्दों में भी अर्जुन की महिमा का वर्णन है। पहले बता दिया कि अर्जुन का रथ जो है बड़ा भारी रथ है, फिर ये भी बता दिया अर्जुन का जो शंख है वो देवदत्त शंख है। अब देखो देवदत्त शंख का अर्थ क्या है, देवदत्त माने ईश्वर का दिया हुआ, हाँ ईश्वर का दिया हुआ शंख है। आप जीवन का तरीका ये है कि ईश्वर का दिया हुआ शंख बजाओ, अपना शंख न बजाओ। अहंकार में व्यक्ति अपना शंख बजाता रहता है, शास्त्री कहते हैं अपना शंख बंद करो, शंख बजाओ ईश्वर का। भगवान कृष्ण भी शंख बजाते हैं, भगवान कृष्ण शंख जो बताते हैं कौन सा बजाते हैं, पांचजन्य के माने क्या है, पंचों का शंख बजाओ, अपनी ढीगा मुष्टि मत करते रहो। ये जितना ही आप ध्यान दोगे उतने ही आपको सांकेतिक अर्थ मिलेंगे। भगवान भी अपनी नहीं चलाते हैं, यही देखते हैं कि जो समाज में जो पंच लोग हैं वे लोग जो कहते हैं उनका आदर करो, उसी के अनुसार चलो, और भगवान जो कुछ कहते हैं अर्जुन उसको मानता है, भगवान का ही शंख बजाता है दिया हुआ। इस प्रकार से ये क्रम है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो अर्जुन का रथ कैसा है, धातराष्ट्रान कपि ध्वजः, धातराष्ट्रान दृष्ट्वा व्यवस्थिता, कि कौरवों को जब इस प्रकार से देखा कि वो युद्ध करने के लिए तैयार हैं, तब कपित ध्वजा के माने अर्जुन जिसके रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान हैं। अब ये संजय धृतराष्ट्र को ये बताता है कि आपको मालूम है हनुमान जी किसके पक्ष में हैं। अब ऐसा थोड़ा ही कि धृतराष्ट्र के समय में लोगों को मालूम ही नहीं हो कि हनुमान कौन है, है? वो सब जानते होंगे कि हनुमान जो राम के युद्ध में जुटे और उन्होंने कितना भयंकर युद्ध किया था हनुमान जी ने, और उनके कारण से युद्ध किस प्रकार का। अब उसकी कथा जो है महाभारत में भी आती इस प्रकार की कि एक बार जब अपने वन में घूमते हुए अर्जुन थे वहां पर, तो हनुमान जी से भी भेंट हो गई। एक बार एक नदी में बहता हुआ पुष्प आया, तो ये हुआ कि कहाँ से बड़ा सुंदर पुष्प है ये, तो वहां से और पुष्प आ में तो भगवान की पूजा की जाए, इन पर चढ़ाई जाए। तो ये हुआ कि हनुमान जी गए जहाँ नदी की धारा थी, देखते देखते पहाड़ के ऊपर बहुत ऊपर चले गए, निकल गए तो वहाँ देखा एक सरोवर है, उसमें फूल हैं, ये लगते हैं यही फूल बहते हुए आए हैं। अब तो उनको जब फूल लेने के लिए आगे बढ़ने लगे तो देखा कि वहाँ बाउंड्री बनी हुई है, उसके ऊपर पार जाने लगे तो पार हनु ये अर्जुन उसके पार नहीं जा पाए। उन्होंने देखा कि एक पूंछ बड़ी मोटी बड़ी भारी वहां पड़ी हुई है जिसके अर्जुन पार नहीं कर पाए, और उन्होंने देखा कि वहां पर हनुमान जी हैं कोई बानर है। इन्होंने कहा, अर्जुन ने उसे कहा कि पूंछ फैलाए हो इसको अपनी हटाओ, हम यहाँ से फूल लेने हैं। तो उन्होंने कहा कि पूंछ हटाने को हम क्या हटाओ, तुम ही सरकार दो, चले जाओ। जब अर्जुन के पूंछ हटाए नहीं हटी है, तब ये हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप कौन हो, क्या हो तो बताए, हम तो हनुमान हैं, और ये इस प्रकार के बताया कि वो सब की उस समय की घटना बताई। तब इन्होंने भी कहा कि आगे चल करके युद्ध होने वाला है, इन्होंने तो उनसे हनुमान जी से कहा कि आप हमारे युद्ध में सहायता करना, आप बड़े वीर हो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे युद्ध में सहायता करो। तो हनुमान जी बोलने लगे कि अब तुम्हारे लोगों के बीच में हम युद्ध क्या करेंगे, क्या सहायता करेंगे, तुम पिग्मी तो हो, बीते बीते भर के तो तुम आदमी हो, और तुम्हारे सामने हम इतना विशाल काय पर्वताकार रूप खड़े होकर के कहेंगे तो लोग बाग हंसेंगे कि देखो ये जरा जरा से लोगों के ऊपर और ये इनको जो है इनको मारे डाल रहा है, वहां हमारे युद्ध करना शोभा नहीं देगा। तो कहा कि नहीं, आप हमारे पक्ष में जरूर रहो, किसी प्रकार से हमारी सहायता जरूर करो। तब हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और जब तुम युद्ध करोगे तो हम सूक्ष्म शरीर धारण करके तुम्हारे ध्वजा के ऊपर विराजमान रहेंगे और तुम्हारे ध्वजा की रक्षा करेंगे। तुम युद्ध करना, वो तुम्हारी ध्वजा गिरने नहीं पाएगी, वो हम बचाए रहेंगे। अब जिसकी ध्वजा नहीं गिरेगी तो हार कैसे जाएगा, मतलब हारने नहीं देंगे, इसलिए हनुमान जी उनकी ध्वजा पर विराजमान है। और संजय उनको याद दिला रहे हैं कि आपको मालूम है कि ये अर्जुन का रथ कैसा है, उसके ऊपर ध्वजा के ऊपर हनुमान जी विराजमान है, माने वो पराजित होने वाले नहीं है किसी भी प्रकार से। ये रथ भी उनका इस प्रकार का है, शंख भी उनका इस प्रकार का है, अर्जुन की जो है ध्वजा के ऊपर हनुमान जी भी बैठे हुए हैं, भगवान कृष्ण जिनके के सारथी बने हुए हैं, तुम समझो कि तुम्हारे पुत्र उनसे जीत जाएंगे, ये संभव नहीं है। ये संकेत बराबर संजय का होता रहता है, इसलिए फिर बता दिया कपित ध्वजा ये है प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। और उस समय जो है वो अर्जुन ने देखा कि कौरव लोग शस्त्र प्रहार करने वाले ही हैं, युद्ध के लिए तैयारी है। तो धनुरुद्यम में पांडवा अर्जुन ने जो है वो पांडवा के माने यहाँ अर्जुन ने धनुरुद्यम में अपना धनुष उठा लिया और वो भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब अर्जुन के सामने युद्ध करने को तैयार हो गया, लेकिन अब ये लगा कि वो युद्ध करे तो किससे करे, इतनी बड़ी सेना खड़ी हुई है तो युद्ध किससे हो। एक प्राचीन काल में इस प्रकार का भी नियम था युद्ध का कि योद्धा लोग अपने समान बल वाले योद्धा से ही युद्ध करते थे। जो कमजोर योद्धा हैं वे लोग बड़े योद्धाओं से युद्ध नहीं करते थे, और बड़े योद्धा भी कमजोर योद्धाओं से युद्ध नहीं करते थे। जैसे रथ के ऊपर सवार रथी हैं तो रथी रथी से युद्ध करेगा, हाथी वाले हाथियों से युद्ध करेंगे, घोड़े वाले घोड़ों वालों से युद्ध करेंगे, पैदल वाले पैदल वालों से युद्ध करेंगे। ऐसा नहीं कि पैदल वाले घूम रहे हैं सामने दिखाई दिए तो रथ वाला बैठा हुआ उसने मार बाण के पहले जितने पैदल के उन्हीं सबको मार गिरा दिया हो, ऐसे नहीं करते थे। माने ये उनके अपने गौरव की बात थी, युद्ध करते समय भी वे अपने गौरव की रक्षा करते थे। कहते कि ये भी कोई बात है कि अपने से कमजोर व्यक्ति उसी के ऊपर कूद पड़ो, उसी को मारने लगो, उसी की संहार कर दो। अब एक व्यक्ति तो इतना शक्तिशाली है कि वो 10,000 व्यक्तियों से युद्ध कर सकता है, और वो एक छोटे से व्यक्ति से जो एक व्यक्ति से युद्ध करता है उसके ऊपर आक्रमण कर दे और उसको मार डाले तो कौन बड़ी वीरता है। इसलिए ये वीरता नहीं कहलाएगी, कायरता कहलाएगी। ऐसे समझ करके योद्धा लोग अपने समकक्ष योद्धाओं से ही युद्ध किया करते थे। तो अर्जुन को भी ये हुआ कि हमारे समकक्ष योद्धा कौन है। अर्जुन महारथी है तो वो ये देखना चाहता था कि सामने महारथी कौन खड़े हैं, किन महारथियों से हमें युद्ध करना है, जिनको कि हम उनका सामना करें और युद्ध करें उनका। और बाकी और लोग हैं, अब सेना में तो कई स्तर के होते हैं लड़ने वाले, पैदल भी लड़ने वाले हैं, तो उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, एक ग्रुप है उनका, एक कमांडर है, फिर ऐसे कमांडरों के तमाम ग्रुप हैं, फिर उनके ऊपर एक और कमांडर है, फिर ऐसे और तमाम ग्रुप हैं, फिर उनके ऊपर कमांडर। तो ये छोटे और बड़े इस प्रकार के स्तर के योद्धा लोग होते हैं, तो जो स्तर जो हो उसके साथ ही युद्ध करते हैं। और इसकी सूचना देने के लिए कौन किन स्तर का है दोनों ही नौसेनाओं में, उनके ध्वजा हुआ करते थे, ध्वज देख करके समझ जाते थे कि इस युद्ध व्यक्ति से हमें युद्ध करना है। दूर से दिखाई देने वाला व्यक्ति रथ पर बैठा न दिखाई दे, लेकिन ध्वज दिखाई देगा, ध्वज का रंग दिखाई देगा, उसका आकृति दिखाई देगी, उसके चिन्ह दिखाई देंगे, उसी से व्यक्ति समझ जाएगा कि ये रथ अमुक व्यक्ति का है और ये महारथी है, इससे हमें युद्ध करना है, अथवा ये रथी है, इससे हमें युद्ध करना है। ये व्यवस्था उस समय थी। और युद्ध जो समय हुआ करते थे वो सूर वीरता के पहचान थे कि जो जितनी वीरता है वो अपनी वीरता दिखा दे, जैसा सूर है तो अपनी सूरता दिखा दे। वे युद्ध कायरता के युद्ध नहीं थे, छिप करके युद्ध करने वाले नहीं थे, पीठ पीछे मार देने वाले युद्ध नहीं थे। ये तो कायरों के और भेड़ियों की बातें हैं, ये कोई युद्ध युद्ध नहीं है जहां के व्यक्ति छिप करके मार गए। ये बात तो तब शुरू हो गई जब विदेशी लोग भारतवर्ष में आए। जब तक कि विदेशी भारतवर्ष में नहीं आए, युद्ध होते थे, लेकिन युद्धों का एक नियम था और उनका भी एक उनके जो है व्यवस्था थी, उसी के अनुसार युद्ध हुआ करते थे। वो तो तब बात आ गई, अब जब आप पृथ्वीराज इत्यादि के संबंध में सुनते हो, उस समाज जमाने से फिर इतिहास बदला और जब विदेशी लोग आए तो लूटपाट करने लगे और वे लोग फिर दूसरे लोगों को धोखा दे करके मारने लगे। अंत में यहां तक हुआ, आप जानते हो कि झांसी रानी के साथ जब युद्ध हुआ, वहां पर भी एक तोपची था, बड़ा बलवान था और बड़ा तोप चलाने वाला था झांसी रानी की तरफ से, तो अंग्रेजों ने उस तोपची को मिला दिया, भेज भाज करके किसी प्रकार से कुछ नौकरों चाकरों को पैसा दे दबा करके, और जब उसको अपने पक्ष में कर लिया तो वो जब फूट गया इस कूटनीति के द्वारा, तब फिर वो जो है झांसी रानी के किला तोड़ सके और उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते, नहीं जीत नहीं सकते थे। बस ये सब के सब जितना जो है ये चोरी वाले युद्ध, धोखा देने वाले युद्ध और ये बेईमानी का काम जितना भी शुरू हुआ इस प्रकार का, और वो जो समाज की एक सभ्यता थी, श्रेष्ठ सभ्यता, उसके ऊपर आघात हुआ। लोग भी समझने लगे, अरे साहब विजय तो ऐसे ही बेईमानों की होती है, विजय तो ऐसे ही चोरों लोगों की होती है, ये धोखाधड़ी वाले यही जीत जाते हैं, तो हम क्यों ना ऐसा करें। बस वहीं से प्रवृत्ति बदल गई लोगों की। प्रवृत्ति क्या बदल गई, उसके कारण समाज ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। जो जीवन का उच्च स्तर था, जैसी सुंदर व्यवस्था थी, वो सब समाप्त हो गई। अब यहाँ पे यद्यपि दोनों सेनाएं जो खड़ी हुई हैं, तो एक धर्म पक्ष है एक अधर्म का पक्ष है, तो भी आप देखो कि यहाँ पर जो युद्ध करने के जो नियम है उस समय तक बहुत कुछ फॉलो किए जा रहे थे, लेकिन महाभारत युद्ध को विस्तार से आप देखो तो वहां पर भी नियमों का उल्लंघन भी शुरू हो गया था। और जहां नियमों का उल्लंघन प्रारंभ हो गया, वहीं से फिर वहां की सभ्यता का ह्रास भी वहीं से शुरू हो गया, तो वहां से हो गया, समाज दुर्बल होने लगता। जहां धर्म की रक्षा नहीं हुई और धर्म के विपरीत आचरण होने लगे, तो बस धर्म भी व्यक्तियों की रक्षा करना छोड़ देता है, धीरे धीरे करके वही स्थिति आती जाती है। अब यहाँ पर इसलिए क्या अर्जुन ने क्या किया, ऋषिकेशम तदा वाक्यम, ऋषिकेश भगवान से अर्जुन बोला, वाक्यम इदमाह मई पते, मई अर्जुन ने भगवान कृष्ण से इस प्रकार से कहा। आगे देखिए।